पाठ 37, अध्याय 42 और 43। हमारे पिछले पाठ के अंत में भरपूर फसल और पशुधन के 7 साल बीत चुके थे और फिरौन के सपने का महान 7 वर्षीय अकाल शुरू हो गया था। यूसुफ अब मिस्र का प्रभारी था और इस खाद्य कार्यक्रम का और राष्ट्र का दूसरा कमांडर था, उसके ऊपर केवल फिरौन था।
इतिहास में इस समय यूसुफ पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था।
उत्पत्ति 41 में वर्णित यह अकाल सूखा, कम वर्षा के कारण हुआ था। यह सूखा जिसने जाहिर तौर पर उत्तरी अफ्रीका को प्रभावित किया, जहां मिस्र स्थित था उसने मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्सों को भी प्रभावित किया।
आइए भूगोल के बारे में थोड़ी बात करें, क्योंकि इससे तोरह के इस भाग की समग्र स्थिति को समझने में मदद मिलेगी और यह भी पता चलेगा कि कई चीजें उस तरह क्यों घटित हुईं। पहला, मिस्र के क्षेत्रीय नाम वास्तव में उससे उलट हैं जो हम सामान्य रूप से सोचते हैं। मिस्र को ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र कहा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि ऊपरी मिस्र दक्षिण में है और निचला मिस्र उत्तर में है। इसके अलावा ऐसा इसीलिए है क्योंकि नील नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यह ऊपरी मिस्र से निचले मिस्र की ओर बहती है, और यह समझाने में मदद करता है कि दक्षिणी मिस्र को ऊपरी क्यों कहा जाता है। जाहिर है पानी नीचे की ओर बहता है, जैसा कि पता चला है मिस्र का दक्षिणी छोर उत्तरी छोर की तुलना में तो रा
अधिक ऊंचा है। इसलिए जैसा कि सभी जानते हैं कि एक नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, नदी के दक्षिणी छोर को ऊपरी कहा जाता है और उत्तरी छोर को निचला कहा जाता है। नील नदी का दक्षिणी छोर ऊपरी मिस्र वह जगह है जहां नील नदी शुरू होती है और वहां 2 विशाल भौगोलिक बेसिन हैं जहां वर्षा होती है और जहां उस वर्षा का पानी स्वाभाविक रूप से नील नदी की ओर बहता है और उसे भरता है। एक बेसिन से सफेद नील और दूसरे से ब्लू नील नदी बहती है। खार्तुम शहर के आसपास सफेद नील और ब्लू नील मिलकर ग्रेट नील नदी बनाते हैं, जिसे हम आम तौर पर नील नदी कहते हैं।
महान नील नदी फिर ऊपर की ओर हमारे विचार से उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर बहती है। जैसे ही यह निचले मिस्र में गोशेन की भूमि के पास पहुंचती है, यह डेल्टा क्षेत्र कहलाने वाले क्षेत्र से टकराती है और नदी कई प्राकृतिक अंगुलियों में विलीन हो जाती है जो अंततः समुद्र में मिल जाती है। हालांकि डेल्टा क्षेत्र, जैसा कि निचले मिस्र का अधिकांश भाग है, नील नदी के प्रचुर जल और दलदली भूमि के कारण लगभग वर्षा रहित रेगिस्तान है, जो गोशेन क्षेत्र की भूमि में फैली हुई उन सभी अंगुलियों द्वारा निर्मित होती है जो पानी को फ्लोरिडा एवरग्लेड्स की तरह भूमि में प्रवाहित होने देती हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ है और फसल उगाने और पशुओं को चराने के लिए बहुत बढ़िया है। यहां मुख्य बात यह है कि मिस्र को रहने लायक बनाने वाली एकमात्र चीज नील नदी है और नील नदी को बनाने वाली एकमात्र चीज ऊपरी मिस्र में दक्षिण की ओर स्थित इन 2 बड़ी घाटियों से होने वाली वर्षा है। हालांकि मिस्र के लोगों ने बहुत पहले ही नील नदी से पानी लाने के लिए नहरें खोदनी शुरू कर दी थी, लेकिन नील नदी के जल स्तर में हर साल होने वाली वृद्धि और गिरावट ही दावत या अकाल का निर्धारण करती थी। यह महत्वपूर्ण है कि नील नदी गर्मियों के 3 महीनों के दौरान अपने किनारों से बाहर निकल जाए। मानसून की तरह की बारिश के कारण होने वाला अति प्रवाह, जो कि दूर दक्षिण में 2 दक्षिणी नदी घाटियों में हुआ जो नील नदी के मुख्य जल स्रोत है, अति प्रवाह ने न केवल भूमि को सींचा बल्कि यह नील नदी के किनारे किनारे फसलों को उगाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर गाद भी लाया। लेकिन 2 महान दक्षिणी नदी घाटियों में से एक में केवल कुछ इंच की वर्षा की कमी नाजुक संतुलन को नष्ट करने और आवश्यक बाढ़ का कारण बनने के लिए पर्याप्त जल प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसा नहीं है कि यूसुफ के समय में नील नदी सूख गई थी, न ही लोगों के पास पीने के लिए पर्याप्त पानी था। यह बस इतना है कि कई सालों तक नील नदी उफान पर नहीं रही और डेल्टा की दलदली भूमि पीछे हट गई और इसलिए मिस्र के नागरिकों को खिलाने के लिए पर्याप्त फसलें पैदा नहीं हुई। स्पष्ट रूप से सभी खाद्य उत्पादन बंद नहीं हुए, लेकिन यह नाटकीय रूप से कम हो गया और लोगों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब हम इस व्यापक अकाल की अलौकिक प्रकृति को समझते हैं। दक्षिणी मिस्र में वर्षा को नियंत्रित करने वाली मौसम प्रणालियों और मध्य पूर्व में वर्षों को नियंत्रित करने वाली प्रणालियां पूरी तरह से अलग हैं। दक्षिणी मिस्र में कई वर्षों तक बहुत कम वर्षा होना और उसी समय कनान में कई वर्षों तक सूखा पड़ना ईश्वर की कृपा थी। ऐसा आम तौर पर नहीं होता। मिस्र और कनान के लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते थे और प्राचीन काल से ही व्यापार स्थापित करते थे। इसका एक कारण यह था कि आम तौर पर जब नील नदी के कम स्तर के कारण मिस्र में फसल खराब होती थी तो मिस्र अतिरिक्त भोजन खरीदने के लिए कनान जा सकता था और इसके विपरीत। लेकिन इस बार यह अलग था। अगर परमेश्वर ने फिरौन को भविष्य सूचक सपना नहीं दिया होता और फिर उसे यूसुफ को इसकी व्याख्या करने के लिए नहीं दिया होता तो मिस्र और कनान दोनों में व्यापक मृत्यु होती, क्योंकि दोनों देशों में खाद्य आपूर्ति कम होती। लेकिन परमेश्वर ने मिस्र को चेतावनी दी और मिस्र ने तैयारी की, क्योंकि वह तैयारी करने में सक्षम था। परमेश्वर ने पहले उन्हें अलौकिक बहुतायत दी ताकि उनके पास लगातार 7 वर्षों तक भारी अधिशेष हो। यूसुफ ने योजना बनाई और इसका उपयोग किया ताकि वे आने वाले 7 खराब वर्षों के लिए अनाज का विशाल भंडार बना सकें। बाद में सूखे की शुरुआत होने पर मिस्र ने आंशिक रूप से करुणा की भावना से, लेकिन मुख्य रूप से स्वार्थ की भावना से अपने गोदामों से अन्य देशों के लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। यह कल्याण नहीं था। उन संग्रहित अनाज की कीमत बहुत अधिक थी। हम उत्पत्ति 42 और 43 की आगामी कहानी से देखते हैं कि याकूब के कबीले के लिए मिस्र से भोजन खरीदने के लिए कई बैग चांदी की आवश्यकता थी। भोजन के लिए आम तौर पर इतनी धनराशि की आवश्यकता नहीं होती थी, जिसे चांदी के बैग भर के रूप में कहा जाता, बल्कि मिस्र इस विस्तारित और व्यापक खाद्य संकट से निपटने में अपने कुशल प्रबंधन पर भारी लाभ कमाने जा रहा। लेकिन कोई गलती न करें, ये उच्च कीमतें केवल विदेशियों के लिए नहीं थी। मिस्र के नागरिकों को भी अपना भोजन फिरौन से खरीदना पड़ता था, या बेहतर यूसुफ से, निश्चित रूप से एक पूरक, आमतौर पर उनके भोजन का एकमात्र स्रोत नहीं। लेकिन जो लोग गरीब थे और जिनके पास अन्य अधिक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध खाद्य स्रोतों तक पहुंच नहीं थी, उनके लिए इस अकाल ने सैकड़ों हजारों मिस्रियों को, संभवतः 1 मिलियन या उससे अधिक, उनकी स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ी। क्योंकि जब इन निम्न वर्ग के मिस्रियों के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे खत्म हो गए तो उनके पास खुद को और अपने परिवारों को फिरौन की बंधुआ सेवा में बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था अनाज के बदले में। लेकिन उनके दृष्टिकोण से यह सेमाइट विदेशी यूसुफ था जो इस अपमान और अपमान के लिए दोषी था, क्योंकि यूसुफ पूरे खाद्य कार्यक्रम का अग्रणी व्यक्ति दृश्यमान प्रतीक था। उसे श्रेय और दोष दोनों मिल रहे थे। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे मिस्र जल्दी भूल जाता। यूसुफ की मृत्यु के बाद और सामाजिक उथल पुथल की एक लंबी अवधि के बाद मिस्रियों ने यूसुफ के रिश्तेदारों को, इसराइल के गोत्रों को अपनी स्थिति के लिए दोषी ठहराया। यह अंततः मिस्रियों को इसराइल पर पलटवार करने के लिए प्रेरित करेगा। किसान मिस्रियों ने अधिक संपन्न और स्वतंत्र इजरायलियों को गुलाम बना लिया, जिससे विदेशी भूमि में इब्रानी लोगों के उत्पीड़न का एक चक्र शुरू हो गया, जिसके बारे में हम पूरी बाइबल में पढ़ते हैं, जिसे हमने पिछली शताब्दी में खुद देखा है और मसीहा के आने तक हम इसे देखते रहेंगे। उत्पत्ति 42 को पूरा पढ़ें।
यदि हम यह समझ सकें कि इसराइल ही वह साधन था जिसका उपयोग परमेश्वर अपने दिव्य उद्देश्यों को इतिहास में इस बिंदु से आगे लाने के लिए करेगा जब तक कि निकट भविष्य में समय समाप्त न हो जाए, तब शायद हम इस बाइबल कथा में जो घटित होने वाला है उसके महत्व को समझना शुरू कर सकते हैं। अब हम मिस्र और यूसुफ से वापस कनान और याकूब की ओर बढ़ चुके हैं। अब भयंकर अकाल ने एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया है। याकूब का वंश बुरी स्थिति में है और इस अध्याय की पहली पद में हम याकूब इज़राइल को व्यंग्यात्मक मूड में देखते हैं, जब वह अपने बेटों से कहता है, तुम एक दूसरे को क्यों घूर रहे हो? दूसरे शब्दों में, तुम जानते हो कि हम बहुत मुश्किल में हैं, तुम जानते हो कि मिस्र में अनाज उपलब्ध है, तो तुम सब यहां क्यों बैठे हो और किसी और के कुछ करने का इंतजार कर रहे हो? याद रखें, वह बच्चों से बात नहीं कर रहा था। ये सभी लोग मध्यम आयु वर्ग के और उससे ज्यादा उम्र के थे, जिनमें से ज्यादातर के अपने परिवार के बच्चे थे। मैं चाहता हूं कि याकूब के बेटों, इज़राइल के गोत्रों के बारे में कुछ अच्छी और प्यारी बातें कह सकूं, लेकिन बाइबल उनके चरित्र के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बताती जो इस समय सराहनीय हो। परमेश्वर ने इज़राइल को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वे महान व्यक्ति थे, उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वह एक महान परमेश्वर है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए साधारण लोगों का उपयोग करता है। और वैसे हमें इज़राइल के साथ खड़े होने के लिए इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि वे विशेष रूप से अच्छे या असाधारण या सहानुभूतिपूर्ण जाति हैं, जो कि वे नहीं हैं। हमें उनके साथ इसलिए खड़ा होना है क्योंकि परमेश्वर ने इस ग्रह के सभी लोगों को ऐसा करने का निर्देश दिया है। जो लोग उनकी बात नहीं मानते उनके लिए भयंकर परिणाम होंगे। इसलिए अमेरिका के लिए तैयार हो जाइए। हमारे राष्ट्रपति ने अब मध्य पूर्व में शांति की विरासत की अपनी इच्छा को, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, इज़राइल के लिए अपनी ईश्वर आदेशित चिंता से आगे रखा है। हम सभी को एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए याकूब इन बेटों के लिए अपनी इच्छा से जो सही और जरूरी है उसे करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए बिन्यामीन को छोड़कर बाकी सभी को मिस्र जाकर अनाज खरीदने का आदेश देता है। क्या बिन्यामीन जाने के लिए पर्याप्त उम्र का नहीं था? निश्चित रूप से था, लेकिन बिन्यामीन ने याकूब के दिल में यूसुफ की जगह ले ली थी, क्योंकि बिन्यामीन और यूसुफ उसकी पत्नी राहेल से उसके दो बेटे थे, जो याकूब को सबसे ज्यादा प्रिय थी। अब मर चुकी राहेल, यूसुफ को खोने के बाद वह बिन्यामीन को जोखिम में नहीं डालने वाला था। जैसे ही इज़राइल के बेटे मिस्र पहुंचते हैं, वे कई और जनजातियों और दूसरे देशों के लोगों के साथ मिल जाते हैं, जिन्हें भुखमरी से बचाने की जरूरत होती है। और उन्हें अपने उद्धार के लिए किसके पास जाना चाहिए? यूसुफ।
पद 6 से यह स्पष्ट होता है कि यह सर्वविदित था कि यह मिस्र का महान वजीर था, जो अब यूसुफ नाम से नहीं बल्कि फिरौन द्वारा दिए गए मिस्र के नाम जाफेनथ पानिया से जा रहा था, जिसके पास अनाज खरीदने के लिए सभी को जाना पड़ता था।
यूसुफ के पास भोजन की आवश्यकता वाले लाखों लोगों की सेवा करने के लिए एक विशाल संगठन रहा होगा, और निश्चित रूप से यूसुफ के लिए उन लोगों से सीधे तौर पर निपटना दुर्लभ रहा होगा जो अनाज खरीदना चाहते थे।
लेकिन जाहिर है यूसुफ के भाई उसे पहचान नहीं पाए। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्हें अपने छोटे भाई को देखे हुए 20 साल हो गए थे और उसके बाल जैसे चेहरे मर्दाना हो गए थे, बल्कि इसलिए था कि अब वह मिस्री लग रहा था। वह साफ सुथरा था। परंपरा के अनुसार इब्रानी लोग हमेशा दाढ़ी रखते थे। उसने अपने बाल मिस्री शैली में रखे थे और उसने कुछ ऐसे सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल किए होंगे जो मिस्र के राजघराने आम तौर पर अपने चेहरे पर लगाते थे। वह मिस्री भाषा भी बोलता था और उस पूर्व तंबू में रहने वाले लड़के के हाव भाव उसकी किशोरावस्था की सारी भद्दी हरकतों के साथ बदल गए थे, और अब यूसुफ एक परिष्कृत और आत्मविश्वासी शाही चाल में बदल गया था। लेकिन उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया, और हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि अपने भाइयों को देखकर उसके मन में क्या कौधा होगा। बहुत पहले इन्हीं लोगों के हाथों अपने परिवार से अलग होने का गहरा दर्द। लेकिन एक नैनो सेकंड में पद 9 में कहा गया है कि उसे अपनी युवावस्था के वे सपने याद आ गए। 11 अनाज के ढेर उसके सामने झुके हुए थे और 11 सितारे, छांद और सूरज उसे प्रणाम कर रहे थे, और यह उस क्षण भी रहा होगा जब अदृश्य ईश्वर द्वारा निर्देशित सभी तैयारियों के साथ वे सपने, जिनके लिए उसके भाइयों और उसके अपने पिता याकूब ने उसे दंडित किया था, सच थे। यूसुफ को पहली बार एहसास हुआ कि ईश्वरीय प्रावधान हमेशा से काम कर रहा था। अब वह निश्चित रूप से जानता था कि ईश्वर ने उसके साथ जो कुछ हुआ उसे क्यों होने दिया। फिर भी यह देखने के लिए कुछ परीक्षण की आवश्यकता थी कि क्या उसके भाइयों को भी एल शद्दाई द्वारा तैयार किया गया था। यूसुफ जो कुछ और जानता है उन पर जासूस होने का आरोप लगाता है। भाई इस बात से पूरी तरह हैरान हैं क्योंकि आरोप का कोई मतलब ही नहीं है, यह तर्कहीनता की सीमा पर है। लेकिन वे डरे हुए हैं क्योंकि वे पूरी तरह से इस शासक की मनमानी दया पर हैं। इस समय सत्य और न्याय का कोई महत्व नहीं है और वे यह जानते हैं। यूसुफ के कद का शासक मामलों का तुरंत फैसला कर सकता है और जो भी सजा उसे उचित लगे उसे दे सकता है। वे अपने भाग्य को नियंत्रित करने में असहाय और शक्तिहीन हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ ने बहुत समय पहले खुद को असहाय पाया था, एक सूखे कुएं के तल पर परा हुआ, दया की भीख मांग रहा था और रो रहा था, जो इन निर्दयी भाइयों से नहीं मिलेगी जो अब उसके सामने हाथ में टोपी लिए खड़े हैं।
वह उनसे सवाल करता है और पाता है कि उसके पिता अभी भी जीवित हैं और उसका छोटा भाई बिन्यामीन भी जीवित है, और इसलिए आदेश देता है कि एक भाई जाए और सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को वापस लाए ताकि उनके इस दावे को साबित किया जा सके कि वे जासूस नहीं थे, कि वे सच बोल रहे थे। लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी 10 को 3 दिनों के लिए जेल में नहीं डाल दिया जाता। बेशक उन्हें जेल में डालने के यूसुफ के फैसले के पीछे का कारण अपने भाइयों को मिस्र के नागरिकों और विदेशियों की भीड़ से अलग करना था, जो मिस्र के आरक्षित अनाज की आपूर्ति खरीदने की उम्मीद में रोज आते थे। वह चाहता था और उसे जरूरत थी कि वह अपने परिवार से अलग से पेश आए और हर किसी की नजर में ना आए।
3 दिन के अंत में उसने अब एक अलग आदेश दिया, 9 भाइयों को अपने कबीले को खिलाने के लिए आवश्यक अनाज लेकर लौटना था। उनमें से एक शिमोन को हिरासत में रहना था ताकि वह अपने कबीले के लिए जमानत दे सके,
और अगर वे बिन्यामीन को वापस नहीं लाते तो शिमोन को अपनी जान गंवानी पड़ती, या ऐसा ही निहितार्थ था। मिस्री भाइयों ने यूसुफ के सामने आपस में अपनी दुर्दशा पर चर्चा की, यह मानते हुए कि वह एक मिस्री था, और वह यह नहीं समझ पाएगा कि वे इब्रानी में क्या बोल रहे थे। और यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ व्यवहार के दौरान एक दुभाषिया को मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल करके इस चाल को जारी रखा। जो कुछ उसने सुना उससे वह रो पड़ा। 2 दशकों से अधिक का अपराध बोध उन पर हावी हो गया और वे जानते थे कि यह उनके छोटे भाई यूसुफ के साथ किए गए अन्याय के लिए हिसाब चुकाने का दिन था। लेकिन उसने रूबेन को भी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हुए सुना। जाहिर तौर पर उसकी बेगुनाही की स्थिति पर कोई असहमति नहीं थी और यूसुफ ने उस पर यकीन किया होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ज्येष्ठ पुत्र रूबेन को बंदी बनाने के बजाय यूसुफ ने याकूब के दूसरे बेटे शिमोन को बंधक बनाने का आदेश दिया। अब यूसुफ ने वाकई उनके दिमाग में गड़बड़ कर दी। उसने आदेश दिया कि भाइयों ने अनाज के लिए जो पैसे दिए थे उन्हें अनाज की बोरियों के गले में छिपा दिया जाए। घर वापस लौटते समय पहली ही रात उनमें से एक अपने गधे के लिए कुछ अनाज लेने गया और वहां पैसे थे। हे परमेश्वर, यहां क्या चल रहा था? उन्होंने तुरंत फैसला किया कि परमेश्वर उन्हें उनका उचित फल दे रहे हैं। कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि अपने पिता से मिलने के लिए कई दिनों की यात्रा पर उनके मन में क्या चल रहा होगा। उनमें से कौन प्रवक्ता होगा जो अपने नाजुक पिता को बताएगा कि न केवल वे संख्या में एक कम रह गए हैं, बल्कि अब उन्हें याकूब के सबसे प्यारे बच्चे बिन्यामीन को अपने साथ मिस वापस ले जाना होगा, अन्यथा फिरौन के आदमियों के आने पर शिमोन बाकी लोगों के साथ मर जाएगा।
याकूब का जवाब स्पष्ट है, तुमने मेरे 2 बच्चों को मुझसे छीन लिया है और अब तुम तीसरा लेना चाहते हो। रूबेन तब याकूब को गारंटी देता है कि वह बेंजामिन को वापस लाएगा, लेकिन अगर वह विफल रहता है तो याकूब सजा के तौर पर रूबेन के 2 बेटों को मार सकता है। हालांकि हमें इस प्रस्ताव पर याकूब का जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन याकूब के चेहरे पर अविश्वास की झलक ही देखी जा सकती है। मुझे लगता है कि उसका स्तब्ध उत्तर कुछ इस तरह रहा होगा,
शानदार, केवल तुम ही समझ सकते हो कि मेरे तीन बेटों को खोने के बाद मुझे अब प्रतिशोध के तौर पर अपने ही पोते पोतियों को मार देना चाहिए। क्या तुम पागल हो?
हम रूबेन को उसके ज्येष्ठ पुत्र होने के अधिकार से वंचित किए जाने में अधिकाधिक बुद्धिमत्ता देखते हैं। रूबेन एक राजनीतिज्ञ, एक बातूनी। वह हमेशा ऐसे भव्य मूर्खतापूर्ण बयान और वादे करता रहता है जो बेकार हैं और जिनका उद्देश्य भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अलावा कुछ नहीं करना है। वास्तव में हम रूबेन से अब और नहीं सुनेंगे, उसे अलग कर दिया गया है और हम यहां से आगे किसी भी अन्य भाई की तुलना में यहूदा की आवाज अधिक सुनेंगे। हालांकि फिलहाल याकूब पूरी तरह से स्तब्ध है और समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। उसे बस इतना पता है कि अगर बिन्यामीन को उससे छीन लिया गया तो वह बच नहीं पाएगा। उसे अब अपने उन बेटों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए वह बिन्यामीन को उनके हवाले नहीं करने वाला। फिर भी वे बिना ज्यादा अनाज के कैसे जिंदा रहेंगे? उत्पत्ति 43 पूरा पढ़े।
थोड़ा समय बीत जाता है और अकाल कम नहीं होता। मिस्र से खरीदा और वापस लाया गया अनाज खत्म हो चुका है। जाहिर है याकूब के 9 बेटे शिमोन अभी भी मिस्र में बंधक बना हुआ है, जो पहले उदास अवस्था में बैठे थे और अपने कबीले को भुखमरी से बचाने की कोशिश नहीं की थी, एक बार फिर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। इसलिए याकूब उन्हें मिस्र वापस जाने और अधिक अनाज लाने के लिए कहता है। बेशक याकूब को उसके बेटों ने याद दिलाया कि वे बिन्यामीन के बिना नहीं जा सकते। याकूब अभी भी बिन्यामीन को अपने विश्वासघाती बेटों को सौंपने के लिए आश्वस्त नहीं है।
फिर यहूदा बोलता है। यहूदा जीवन से नम्र, अपनी बहू तामार के साहसिक कार्य से नम्र। जब यहूदा उसकी दुर्दशा का उचित तरीके से जवाब देने में विफल रहा, अब खुद को बेंजामिन के लिए जमानतदार के रूप में पेश करता है। अब कोई पूछ सकता है, अगर याकूब बेंजामिन को मिस्र ले जाने और उसे सुरक्षित घर वापस लाने के अपने मिशन में विफल हो जाता है तो वह यहूदा से कया दंड ले सकता है? खैर, जैसा कि हमने कुछ समय पहले चर्चा की थी, यहूदा ने लगभग निश्चित रूप से खुद को इज़राइल के कबीले की संपत्ति और अधिकार के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि रूबेन को अब ज्येष्ठ पुत्र का आशीर्वाद नहीं मिलने वाला था, क्योंकि उसने अपने पिता के बिस्तर को अपवित्र कर दिया था। और जाहिर है याकूब के दूसरे और तीसरे बेटे ही थे जिन्होंने शेखेम पर बदला लेने के लिए हमला किया, हर पुरुष को मार डाला और फिर शेष निवासियों को लूटने का नेतृत्व किया। इससे वे अयोग्य हो गए होंगे। इसलिए यूसुफ, जो पहले याकूब का पसंदीदा था, अब मृत माना जाता है। यहूदा, जो चौथे स्थान पर था, ने खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखा होगा जो जल्द ही इज़राइल के कबीलों का नेता होगा। यहूदा ने बेंजामिन के साथ कुछ होने पर सारा दोष स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त करके बहुत कुछ खो दिया था। वह भी वंचित हो सकता था। याकूब भी यह जानता था और उसने महसूस किया होगा कि यदि बेंजामिन को बचाना संभव था तो यहूदा इसे देखने के लिए मानवीय रूप से सब कुछ करेगा। यहां आखिरकार एक ऐसा बेटा था जिस पर भरोसा किया जा सकता था। याकूब इस मामले में यहूदा पर भरोसा कर सकता था, लेकिन उससे भी ज्यादा याकूब परमेश्वर पर भरोसा करेगा। अगर उसे अपने सभी बेटों को खोना पड़े तो ऐसा ही हो, यह परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए जो पैसा पहली यात्रा से लौटते समय रहस्यमय तरीके से उनके अनाज के बोरों में आ गया था, तथा नया अनाज खरीदने के लिए उतनी ही राशि लेकर बिन्यामीन सहित भाई वापस मिस्र की ओर चल पड़े। यूसुफ देखता है कि उसके भाई लौट आए हैं और उनके साथ बिन्यामीन भी है, इसलिए वह दोपहर को भोज तैयार करने और परोसने का आदेश देता है। वह अपने नौकरों को आदेश देता है कि वे उसके भाइयों को इस भोज के लिए अपने घर के अंदर ले आएं। लेकिन भाइयों को लगता है कि यह एक जाल है, उन्हें गुलाम बनाकर ले जाया जाएगा, जैसा कि उन्होंने यूसुफ के साथ होने की योजना बनाई थी। उनके बैग में मिले पैसे से घटना का बदला लिया जाएगा। यूसुफ के घर के प्रबंधक ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं है। यूसुफ अपने घर पहुंचता है और भाई उसे वे उपहार देते हैं जो वे कनान से अपने साथ लाए थे। यूसुफ अपने पिता के बारे में पूछता है और वे उसे बताते हैं कि वह ठीक है। फिर यूसुफ की नजर बेंजामिन पर पड़ती है। वह भावनाओं से अभिभूत हो जाता है और उसे कुछ पलों के लिए उन्हें अकेले में कड़वे मीठे आंसू बहाने के लिए छोड़ना पड़ता है।
अब यूसुफ शांत होकर लौटता है और भोजन परोसा जाता है। इन पदों में हम जो देखते हैं वह मिस्र में इस तरह के भोजन परोसने के तरीके का पूरी तरह से सटीक विवरण है। यूसुफ अकेले खाता है, भाई एक समूह के रूप में एक साथ खाते हैं, और मिस्र के घर के नौकर दोनों भाइयों और यूसुफ से अलग अलग खाते हैं। यह मिस्र की अच्छी तरह से प्रलेखित प्रथा है कि घर का मुखिया कभी भी नौकरों के साथ नहीं खाता, लेकिन नौकरों ने इजरायली भाइयों के साथ क्यों नहीं खाया? खैर, हमें पद बताया गया है कि मिस्रियों के लिए इब्रानियों के साथ खाना खाना घृणित था। यह दिलचस्प बात है, आप इब्रानियों को देखें, जैसा कि इस युग में कई सेमाइंट जनजातियां और लोग समूह थे, चरवाहे। मिस्र के लोग चरवाहों को सबसे निम्न श्रेणी के लोगों के रूप में देखते थे और उनकी उपस्थिति मात्र अपमानजनक थी। एक मिस्री कभी भी चरवाहे के साथ खाना नहीं खाता था। मिस्र के लोग भेड़ों को नहीं मवेशियों को महत्व देते थे। यही कारण है कि मिस्र के सर्वोच्च देवता आइसिस का प्रतिनिधित्व एक बैल द्वारा किया जाता था। लेकिन जल्द ही इस मिस्र की परंपरा का एक और पहलू सामने आने वाला था। इसराइलियों को रहने के लिए गोशेन की भूमि दी जाने वाली थी, एक ऐसी भूमि जहां वे मिस्र के समाज के बड़े हिस्से से दूर रहेंगे, अपनी भेड़ों को पालेंगे और मिस्र की संवेदनशीलता को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जब भाई खाने के लिए बैठे तो प्रत्येक को प्रत्येक भाई के लिए विशेष रूप से आरक्षित स्थान पर एक नौकर द्वारा सावधानी पूर्वक बैठाया गया। वे यह देखकर दंग रह गए कि उन्हें उनके जन्म के सही क्रम में सबसे बड़े से सबसे छोटे तक व्यवस्थित किया गया था। इसका क्या मतलब हो सकता है? इससे भी अधिक, बेंजामिन को बाकी सभी की तुलना में 5 गुना अधिक भोजन दिया गया था। विद्वानों ने बेंजामिन पर भोजन के इस 5 गुना आशीर्वाद के अर्थ पर बहस की है और आम सहमति यह है कि मिस्र में एक राजकुमार या शासक को राजसीपन के संकेत के रूप में बाकी सभी की तुलना में 5 गुना अधिक दिया जाता था। बेशक यह भी सवाल उठाता है कि यूसुफ इसके साथ क्या संकेत दे रहा था। मेरी व्यक्तिगत राय है कि यूसुफ उस भाई का सम्मान कर रहा था जिससे उसका सबसे अधिक लगाव था, जिसकी मां एक ही थी, और वह जो 11 भाइयों में से यूसुफ को गुलामी में बेचे जाने के संबंध में किसी भी गलत काम में पूरी तरह से निर्दोष था। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इज़राइल का सबसे पहला राजा बेंजामिन का वंशज होगा।